नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। डॉलर्स एंड सेंस, बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट डैन एरियली और लेखक जेफ क्राइसलर की पर्सनल फाइनेंस तथा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर आधारित पुस्तक है। इसका विषय निवेश के तकनीकी नियम, शेयर चुनना या जल्दी अमीर बनना नहीं है। इसका केंद्रीय प्रश्न अधिक बुनियादी है, हम पैसे के बारे में इतने असंगत ढंग से क्यों सोचते हैं। लेखक दिखाते हैं कि धन को केवल विनिमय के तटस्थ माध्यम की तरह देखना मानव व्यवहार का अधूरा चित्र है। भुगतान की पीड़ा, सौदे का आकर्षण, स्वामित्व का लगाव, अलग अलग खर्चों के लिए बनाए मानसिक खाते और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सभी निर्णयों को बदल देते हैं। पुस्तक का उद्देश्य पाठक को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों को पहचानना सिखाना है जिनमें सामान्य बुद्धि भी भटक सकती है। हास्य, रोजमर्रा के उदाहरण और मनोवैज्ञानिक शोध के सहारे यह बताती है कि बेहतर वित्तीय व्यवहार का आरंभ अधिक जानकारी से नहीं, बल्कि अपनी निर्णय प्रक्रिया की कमियों को देखने से होता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, पैसा मूल्य का प्रतिनिधि है, स्वयं मूल्य नहीं। पुस्तक का आरंभिक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि पैसा अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है, वह समय, सुविधा, सुरक्षा, अनुभव, संबंधों और भविष्य के विकल्पों तक पहुंच का प्रतीक है। फिर भी लोग अक्सर निर्णय को केवल कीमत या खाते से निकली रकम तक सीमित कर देते हैं। इस संकुचन से वे उस व्यापक प्रश्न को भूल जाते हैं कि खर्च से जीवन में वास्तव में क्या बदलेगा। उदाहरण के लिए, कम कीमत का उत्पाद केवल इसलिए अच्छा विकल्प नहीं हो जाता कि वह सस्ता है, यदि उसका उपयोग कम है, रखरखाव कठिन है या वह किसी अधिक उपयोगी विकल्प के लिए संसाधन घटा देता है तो उसकी वास्तविक लागत अधिक हो सकती है। लेखक यह भी रेखांकित करते हैं कि कीमत हमारे मूल्यांकन को प्रभावित करती है, जबकि आदर्श रूप से किसी वस्तु की उपयोगिता, गुणवत्ता और उससे मिलने वाला अनुभव अलग आधारों पर परखा जाना चाहिए। महंगी वस्तु को बेहतर मान लेना और छूट वाली वस्तु को स्वचालित बचत समझ लेना दोनों इसी भ्रम के रूप हैं। उपयोगी सुधार यह है कि हर बड़े खर्च से पहले रकम के बजाय अपेक्षित उपयोग, अवधि, सुविधा और छोड़े जा रहे विकल्पों पर विचार किया जाए। इस तरह पैसा लक्ष्य नहीं, निर्णयों की तुलना का साधन बनता है। दूसरा, अवसर लागत को न देखना खर्च की सबसे गहरी भूल है। अवसर लागत का अर्थ है किसी एक विकल्प को चुनते समय उन अन्य संभावनाओं का त्याग, जिनके लिए वही पैसा, समय या ध्यान लगाया जा सकता था। एरियली और क्राइसलर के अनुसार लोग खरीदारी करते समय प्रायः इसी हिस्से को अनदेखा कर देते हैं। वे कार खरीदते हुए दूसरी कार से तुलना कर सकते हैं, पर यह नहीं सोचते कि वही धन यात्रा आपात बचत, कर्ज घटाने, शिक्षा या रोजमर्रा की सुविधा में क्या कर सकता था। इसलिए बाजार में उपलब्ध विकल्पों की तुलना आसान लगती है, जबकि जीवन के अन्य विकल्पों की तुलना अदृश्य बनी रहती है। विपणन भी इस कमजोरी का लाभ उठाता है। वह उत्पाद की किस्त, छूट या सीमित अवधि की पेशकश को सामने रखता है, लेकिन उस खर्च से हटने वाले दीर्घकालिक अवसरों को नहीं। अवसर लागत का विचार हर छोटी खरीद को अपराध नहीं बनाता, इसका काम प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना है। यदि कोई अनुभव सचमुच आनंद, उपयोगिता या संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है तो खर्च उचित हो सकता है, पर निर्णय जानबूझकर होना चाहिए, केवल तत्काल इच्छा से नहीं। पुस्तक का व्यावहारिक संकेत है कि बड़ी या बार बार होने वाली खरीद के लिए एक वैकल्पिक सवाल तय किया जाए, इस रकम से मैं और क्या सार्थक कर सकता था। यह छोटा विराम आवेग और प्राथमिकता के बीच दूरी बनाता है। तीसरा, मानसिक और भावनात्मक खाते एक ही रुपए को अलग बना देते हैं। पुस्तक बताती है कि व्यवहार में लोग धन को पूरी तरह विनिमय नहीं मानते, वे उसे मानसिक खातों में बांट देते हैं, जैसे भोजन का पैसा, मनोरंजन का पैसा, बोनस, जुए का पैसा या अप्रत्याशित रूप से मिला धन। आर्थिक दृष्टि से एक रुपया दूसरे रुपये के बराबर हो सकता है, लेकिन मानसिक लेबल बदलते ही खर्च करने की अनुमति और पछतावे की मात्रा बदल जाती है। कोई व्यक्ति वेतन से मिले पैसे को सावधानी से खर्च करे, पर उपहार, बोनस या रिफंड को अतिरिक्त मानकर जल्दी उड़ा दे। इसी तरह मनोरंजन के खाते में हुई हानि को व्यक्ति दैनिक जरूरतों के बजट से अलग समझकर कम गंभीर मान सकता है। इससे कुल वित्तीय स्थिति की साफ तस्वीर धुंधली हो जाती है। भावनात्मक लेखांकन इस समस्या को और बढ़ाता है। धन के स्रोत से जुड़ी खुशी, अपराध बोध, क्रोध या असहजता यह तय कर सकती है कि व्यक्ति उसे बचाएगा, दान करेगा या बिना योजना खर्च करेगा। लेखक का तर्क भावनाओं को मिटाने का नहीं है, क्योंकि वे वास्तविक अनुभव हैं। बात यह है कि भावनात्मक अर्थ और आर्थिक निर्णय को एक ही चीज न माना जाए। नियमित रूप से कुल आय, कुल खर्च, कर्ज और बचत को एक साथ देखना मानसिक खातों के भ्रम को घटा सकता है। विशिष्ट खर्च बजट उपयोगी हैं, बशर्ते वे पूरे वित्तीय चित्र से कटे न हो। चौथा, स्वामित्व और भुगतान की दूरी मूल्यांकन को विकृत करती है। किसी वस्तु का मालिक बनते ही लोग प्रायः उसका मूल्य बढ़ाकर आंकने लगते हैं। इसे एंडोमेंट इफेक्ट कहा जाता है। पुरानी चीज बेचते समय व्यक्ति उसके लिए अधिक कीमत मांग सकता है, जबकि खरीदते समय वही कीमत देने को तैयार नहीं होता। पुस्तक इस प्रवृत्ति को केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं रखती, क्योंकि समय, मेहनत और पहचान का निवेश भी स्वामित्व की भावना बढ़ा सकता है। परिणाम यह होता है कि लोग अनुपयोगी सामान, घाटे वाले निर्णय या महंगे विकल्प से अलग होना कठिन पाते हैं। इसके साथ भुगतान का तरीका भी व्यवहार बदलता है। नकद देने में धन का जाना स्पष्ट लगता है, जबकि कार्ड, डिजिटल भुगतान, टोकन या किस्तें खर्च की तत्काल पीड़ा को कम कर सकती हैं। यह सुविधा उपयोगी है, पर खर्च और उसके परिणाम के बीच दूरी बढ़ने पर नियंत्रण घट सकता है। लेखक का आशय यह नहीं कि हर कार्ड या किस्त खराब है। समस्या तब है जब भुगतान की आसानी व्यक्ति को कुल कीमत, ब्याज, बार बार होने वाले छोटे खर्च या बजट सीमा भूलने दे। सुधार के लिए खरीदने से पहले पूछा जा सकता है कि यदि यह वस्तु मेरे पास न होती तो क्या मैं इसे आज इसी कीमत पर खरीदता। खर्च के बाद लेन देन को दर्ज करना और कुल राशि देखना भी भुगतान को फिर से वास्तविक बनाता है। ऐसे उपाय स्वामित्व के लगाव और सहज भुगतान दोनों के प्रभाव को संतुलित करते हैं। अंत में छूट, अनुष्ठान और आसान बजट के माध्यम से व्यवहार को दिशा देना। डॉलर्स एंड सेंट्स केवल गलतियों की सूची नहीं देती, बल्कि यह भी देखती है कि अनुभव, संदर्भ और संरचना खर्च की अनुभूति को कैसे बदलते हैं। छूट इसका स्पष्ट उदाहरण है। लोग अक्सर केवल इसलिए खरीद लेते हैं कि घोषित कीमत कम है, जबकि सही तुलना यह है कि यदि कोई छूट न होती तो क्या वस्तु की जरूरत या उपयोगिता खरीद को उचित ठहराती। कम कीमत तभी बचत है जब खरीद पहले से आवश्यक या मूल्यवान हो। लेखक उपभोग के अनुष्ठानों पर भी ध्यान देते हैं। किसी भोजन को ध्यान से तैयार करना, किसी अनुभव के लिए समय निकालना या उपयोग की एक व्यक्तिगत प्रक्रिया बनाना आनंद और नियंत्रण की अनुभूति बढ़ा सकता है। इससे यह संकेत मिलता है कि अधिक खर्च हमेशा अधिक संतोष नहीं देता। उपभोग का ढंग भी मायने रखता है। बजट के मामले में पुस्तक अत्यधिक जटिल नियंत्रण प्रणालियों के प्रति सावधान करती है। बहुत कठोर और विस्तृत नियम अक्सर लंबे समय तक नहीं टिकते, ठीक वैसे ही जैसे अस्थिर आहार योजनाएं। इसके बजाय आवश्यक खर्चों के बाद विवेकाधीन खर्च के लिए व्यावहारिक सीमा तय करना अधिक उपयोगी हो सकता है। अलग खर्च खाते या प्रीपेड माध्यम कुछ लोगों को सीमा स्पष्ट रखने में मदद दे सकते हैं। मुख्य कसौटी व्यवस्था की कठोरता नहीं, उसकी निरंतरता और ईमानदार समीक्षा है। निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जानते हैं कि बचत, बजट और समझदारी से खर्च करना महत्वपूर्ण है, फिर भी व्यवहार में बार बार आवेग, छूट, सुविधा या भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। नए कमाने वालों, परिवार का बजट संभालने वालों, उपभोक्ता ऋण से सावधान लोगों और वित्तीय शिक्षा देने वालों को इसमें रोजमर्रा के निर्णयों के लिए उपयोगी मानसिक ढांचा मिलेगा। अनुभवी निवेशक भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि निवेश से पहले और बाद के व्यवहार में स्वामित्व, हानि से बचने की प्रवृत्ति तथा मानसिक खाते काम करते हैं। हालांकि जो पाठक कर योजना, परिसंपत्ति आवंटन, शेयर विश्लेषण या विस्तृत निवेश रणनीति चाहते हैं, उन्हें इसके साथ अन्य व्यावहारिक वित्तीय स्रोतों की जरूरत होगी। डॉलर्स एंड सेंट्स की अलग पहचान यह है कि यह पैसे को केवल गणित की समस्या नहीं मानती। बहुत सी पर्सनल फाइनेंस पुस्तकें बताती हैं कि कितना बचाना चाहिए, कर्ज कैसे घटाना चाहिए या बजट कैसे बनाना चाहिए। एरियली और क्राइसलर पहले उस व्यवहारिक अंतर को समझाते हैं जिसमें व्यक्ति सही नियम जानते हुए भी उनका पालन नहीं कर पाता। उनका जोर शर्म या कठोर अनुशासन पर नहीं, बल्कि निर्णय के क्षण में काम करने वाले संकेतों को पहचानने पर है। अवसर लागत पर विचार, मानसिक खातों की जांच, छूट के पीछे रुककर सोचना और भुगतान को वास्तविक महसूस करना छोटे लेकिन लागू किए जा सकने वाले अभ्यास हैं। हास्यपूर्ण शैली विषय को सुलभ बनाती है, हालांकि कुछ पाठकों को विचारों की पुनरावृत्ति महसूस हो सकती है। फिर भी व्यवहारिक अर्थशास्त्र को दैनिक खर्च से जोड़ने के कारण यह पुस्तक अपने क्षेत्र में विशिष्ट स्थान रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं डैन आरियली, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।